हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वहां लेटी बेहोश सुनैना से बातें करते हुए कहा, क्यों सोना, क्यों कब तक इस तरह से लेटी रहोगी और कितना आराम करोगी? वापस आ जाओ ना मेरे पास। सोना, तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखकर ही तो मैंने जीना सीखा था। तुम मेरी जिंदगी मुझसे कैसे छीन सकती हो? और तुम्हें पता है, मेरा बहुत मन कर रहा है ड्रिंक करने का, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला, और ना ही तुम्हें नाराज करूंगा। तुम पहले ही मुझसे बहुत नाराज हो ना, इसलिए सॉरी। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास, अपने आदि के पास। ये सब बोलते हुए आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके कुछ आंसू सुनैना के हाथों पर गिर पड़े। आदित्य अपनी बेबसी पर रो रहा था, क्योंकि अभी फिलहाल वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सुनैना भले ही अनकॉन्शियस थी, लेकिन उसे आदित्य अपने आसपास महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसने थोड़ा हाथ हिलाया। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। आदित्य को लगा जैसे सुनैना की एक उंगली में कुछ हरकत हुई। ऐसा कुछ महसूस होते ही उसने मशीन की तरफ देखा। आदित्य ने देखा कि सुनैना की हार्ट रेट बढ़ रही थी, लेकिन उसे कुछ और समझ नहीं आया। उसने सुनैना के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली की और बहुत ही ध्यान से उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट को देखने लगा। जब आदि ने सुनैना के हाथ को देखना शुरू किया, तो इस बार उसने अपनी आंखों से सुनैना के हाथ का अंगूठा हिलता हुआ देखा। ये देखकर उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी। उसे लगा कि सुनैना को होश आ रहा है, लेकिन वो इस वक्त क्या करेगी, उसे समझ में नहीं आया। उसने डॉक्टर को ऊंची आवाज में बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, नर्स, कहाँ हैं आप सब? देखिए, आकर मेरी सुनैना को चेक करिए, वो ठीक है, प्लीज कुछ करें, वो होश में आ सकती है, उसकी उंगलियां, उसके हाथ में मूवमेंट है। आदित्य के इस तरह चिल्लाने पर पूरा स्टाफ और डॉक्टर दौड़ते हुए कमरे में आए। आदित्य की बात सुनते हुए डॉक्टर ने सुनैना की पूरी बॉडी पर एक नज़र डाली, लेकिन उन्होंने देखा कि उस समय सुनैना के हाथ में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर नर्स एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। आदित्य उनके जवाब के इंतजार में अभी भी बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहा था। आदित्य की हालत देखते हुए डॉक्टर ने काफी अफसोस से कहा, इसलिए हम आपको मरीज को देखने नहीं दे रहे थे, आप अपनी हालत देखते हुए, मैंने इस बात की इजाज़त दे दी थी, बट कोई बात नहीं, ऐसे समय में ऐसा होता है, लेकिन प्लीज अभी बाहर जाकर इंतजार करिए। आदित्य ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं डॉक्टर, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, आप मेरी बात पर यकीन करिए। उनमें से किसी को भी आदित्य की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसा बोलकर वे उसकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे। वहीं स्टाफ की एक नर्स आगे आते हुए बोली, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी वो होश में नहीं है, और जब वो होश में आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन प्लीज अभी आप बाहर जाइए, आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आदित्य बाहर नहीं जाना चाहता था, पर डॉक्टर और उस नर्स की बात सुनकर उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। वो दरवाजे की तरफ चला गया, लेकिन बाहर जाने से पहले वो कुछ पल के लिए दरवाजे पर रुका और पीछे मुड़कर उसने एक बार फिर से सुनैना की तरफ देखा, लेकिन इस बार आदित्य को भी सुनैना की बॉडी में कहीं भी कोई हलचल नजर नहीं आई। उसने एक ठंडी सांस ली। आदित्य बहुत ही मायूस होकर सुनैना के कमरे से बाहर निकला। उसने बाहर नैना को भी एकदम अपनी ही तरह मायूस खड़ा देखा। उसकी आवाज़ सुनकर शायद वो भी इस बात को लेकर थोड़ी खुश हो गई थी कि शायद सुनैना को होश आ गया है, लेकिन अभी डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आदित्य को ऐसा लगा, जबकि सिर्फ आदित्य ही जानता है कि उसे ऐसा लगा नहीं था, सच में ऐसा हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक नज़र नैना की तरफ देखी, उन दोनों की नज़रें मिली, पर उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला। आदित्य की ऐसी हालत देखकर अनय आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा और जल्द ही भाभी को होश भी आ जाएगा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने बस हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर आकर अपनी जगह बैठ गया जहाँ पर वो पहले बैठा था, लेकिन इस बार उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कुछ करने लगा। कुछ देर के बाद विवान वहां आया। उसने बाकी किसी से कुछ नहीं बोला, वो सीधे नैना की तरफ गया और उसने नैना से ही कहा, नैना चलो हमें चलना होगा अभी शूटिंग के लिए। नैना ने कहा, नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, क्या शूटिंग एक दिन के लिए रुक नहीं सकती है? इस पर विवान ने कहा, नहीं, पिछले दो दिनों से तुम पहले ही सेट पर नहीं जा रही थीं। खैर, तब हमारा कोई सीन शूट नहीं होना था, लेकिन अभी हमारा सीन शूट होना है, और अगर तुम नहीं जाओगी तो प्रोडक्शन का काफ़ी लॉस होगा और वे तुम्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ नैना, लेकिन पहली फिल्म में आर्टिस्ट को इस तरह के नखरे नहीं करने चाहिए, विवान उसे समझाते हुए बोला। लेकिन उसकी इस बात को नैना ने दूसरी तरह से ले लिया। विवान की तरफ देखते हुए बोली, विवान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई नाटक कर रही हूँ? मेरी बहन पिछले दो दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच, उसे अब तक होश नहीं आया है, और तुम्हें ये सब मेरे नखरे लग रहे हैं सिर्फ शूटिंग पर ना जाने के लिए? वाओ! इतना बोलते हुए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ नैना ने एक नज़र विवान की तरफ देखी और फिर उसकी तरफ से अपनी नज़रें फेर लीं, क्योंकि उसे लगा कि विवान भी उसे नहीं समझता है, जिसके साथ वो इतने समय में काफ़ी क्लोज और कंफर्टेबल हो गए थे। नैना के इस तरह के रिएक्शन पर विवान समझ गया कि उसने ज़रूर उसकी बात को गलत समझ लिया है, इसलिए वो अपनी बात अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हुआ बोला, अरे नहीं, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी सिचुएशन जानता हूँ, लेकिन ये सारी बात तुम आखिर किस किस को बताओगी? जाकर पूरे कास्ट, क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैनेजमेंट सबको ये बात बताओगी क्या कि तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वजह से तुम शूट पर नहीं आई? बोलो, बताओगी पर्सनली सबसे? उसकी बात सुनकर नैना थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे एक बार को लगा कि विवान जो भी कह रहा है एकदम सही कह रहा है, इसलिए उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? उन दोनों की बात आदित्य भी चुपचाप वहाँ बैठा हुआ सुन रहा था, और अनय भी, लेकिन अनय ने उन दोनों को आज पहली बार ही वहाँ हॉस्पिटल में देखा है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। वो आदित्य के कुछ बोलने या रिएक्ट करने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर में आदित्य उठकर उन दोनों की तरफ जाते हुए एकदम सीरियस और डीप आवाज़ में बोला, विवान सही कह रहा है नैना, तुम जाओ इसके साथ, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आज इतनी देर में खुद से पहली बार ही उसने कुछ बोला, तो नैना उसकी आवाज़ सुनकर हैरानी से उसकी तरफ ही देखने लगी। नैना को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर आदित्य ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हो? मुझे भी लगता है तुम्हें अपनी शूटिंग कंप्लीट करने जाना चाहिए। आखिर सुनैना कितनी खुश थी ना इस बात को लेकर, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उसकी बहन इतनी बड़ी बजट की फिल्म में काम कर रही है। वो बहुत खुश होगी तो मैं स्क्रीन पर देखकर, और अगर उसे पता चला कि उसकी वजह से तुम्हारे हाथ से फिल्म चली गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आदित्य की बात को समझते हुए धीरे से अपना सिर हिलाकर नैना बोली, हाँ, मुझे भी यही ठीक लग रहा है, मैं जा रही हूँ, बट प्लीज़ अगर सुनैना को होश आ जाए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। नैना की ये रिक्वेस्ट सुनकर आदित्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ही इन्फॉर्म करूँगा, आखिर उसका है ही कौन?
नैना ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देख कर कहा, तुम हो ना आदित्य, उसका सब कुछ? ये बात सुनकर आदित्य ने एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखा और वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, लेकिन नैना से अपने इमोशन छुपा रहा था। दूसरी तरफ नैना भी थोड़ी सी इमोशनल फील कर रही थी क्योंकि बात उसकी बहन से जुड़ी थी। नैना की ऐसी बात सुनकर आदित्य को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि सुनैना ने नैना को उसके और अपने रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ था और नैना को भी ज़्यादातर बातें पता हैं, लेकिन आदित्य को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता है कि नैना सुनैना की बड़ी बहन है जो कि उससे बहुत प्यार करती है और वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगी, फिर वो चाहे उसके और आदित्य के रिश्ते को लेकर हो या फिर उसकी चोट सही होने के बारे में, वो बस उसके अच्छे के लिए ही भगवान से प्रार्थना करेगी। नैना की बात सुनकर आदित्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, अब जाओ, नहीं तो लेट पहुँचोगी शूटिंग पर। आदित्य की बात पर नैना ने भी हाँ में सिर हिलाया और थोड़ा सा आगे आकर अनय की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप मेरे जीजू का ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। अनय को पहले समझ नहीं आया कि नैना उसे ही ये बात बोल रही है, इसलिए उसने चौंक कर नैना की तरफ देखा और फिर अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुझसे कह रही हो क्या कुछ? नैना ने उससे सवाल किया, और कोई है क्या यहाँ पर? अनय एकदम से बोला, हाँ नहीं, मेरा मतलब कोई और नहीं है और मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा क्योंकि आपके जीजू आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके बाद नैना विवान के साथ वहाँ से चली गई, लेकिन वो घर नहीं गई और ना ही अक्षत से मिली। वो विवान के साथ सीधा शूटिंग लोकेशन पर पहुँची और वहाँ सेट पर बाकी सब बस उसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। नैना के लेट जाने की वजह से सिया ने उसे ताने भी मारे, लेकिन नैना ने इस वक्त उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो देर से आई थी तो तब तक शूटिंग की सारी तैयारियां हो गई थी और उसके आते ही उसके और विवान का सीन शूट होने लगा। नैना काफी अच्छे से एक्टिंग कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी सीन को रीशूट करने में टाइम वेस्ट हो, क्योंकि उसे जल्द से जल्द शूटिंग खत्म करके उसे फिर से वापस हॉस्पिटल ही जाना था। वो भले ही फिजिकली वहां पर प्रेजेंट थी, लेकिन मेंटली अभी भी वो हॉस्पिटल में ही थी और उसका सारा ध्यान आदित्य और सुनैना में ही लगा हुआ था। विवान उसके मेंटल स्टेट को समझ रहा था, इसलिए वो उसे सपोर्ट कर रहा था और उसके साथ काफी अच्छे से सारे सीन शूट कर रहा था। क्रमशः